ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रोड शो कर रहे हैं। श्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। गाजियाबाद से भाजपा नेता ने अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले श्री मोदी ने राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। पुष्कर में श्री मोदी ने देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में और बड़े फैसले लिए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में सरकार ने जो काम किए हैं वो ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कांग्रेस की ओर से कल जारी किए गए घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह कांग्रेस को बेनकाब करने वाला घोषणा पत्र है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को आश्वासन दिया है कि देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में देशभर में आतंकी गतिविधियां होती थीं, लेकिन भाजपा शासनकाल में इन पर काबू पाया गया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए आज 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उत्तरी गोवा निर्वाचन क्षेत्र से रमाकांत खलप और दक्षिणी गोवा निर्वाचन क्षेत्र से कैप्टन विरियाटो फर्नांडीस को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश के मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार और ग्वालियर से प्रवीण पाठक पार्टी के उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बेंगलुरु में पानी की कमी की स्थिति पर निराशा व्यक्त की है। आज बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि चिंताजनक और दुखद है कि बेंगलुरु शहर पेयजल संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में हैजे की आशंका है। जब पेयजल संकट होता है तो लोगों तक दूषित पानी पहुंचने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक में आए परिवर्तनकारी बदलावों को दर्शाने के लिए दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा ने एक नई वेबसाइट मोदी ट्रांसफॉर्मिंग भारत की शुरुआत की है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सरकार की पहलों के बारे में जनता को जागरूक करने में युवाओं की भागीदारी पर बल दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने शिशुओं के तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। सीबीआई ने दिल्ली और हरियाणा में 7 स्थानों पर तलाशी ली। इस दौरान 3 नवजात बच्चों को बचाया गया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी विज्ञापन के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोद लेने के इच्छुक निसंतान दंपतियों से जुड़ते थे और उनसे 4 से 6 लाख रूपये में बच्चों को बेचते थे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने वर्ष 2022 में पश्चिम बंगाल के भूपति नगर विस्फोट मामले में 2 मुख्य षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया है। इस विस्फोट में 3 लोग मारे गए थे। एनआईए ने कहा कि इन दोनों अपराधियों को राज्य के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में भीड़भाड़ वाले इलाकों से गिरफ्तार किया गया। भीड़ में असामाजिक तत्वों के हमले के कारण एनआईए दल के एक सदस्य को मामूली चोटें आईं और सरकारी वाहन को भी नुकसान पहुंचा। एनआईए ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित कथित धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस मामले में सह आरोपी पार्टी नेता संजय सिंह भी न्यायालय के समक्ष पेश हुए। संजय सिंह को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिली है। अनुपमा उपाध्याय और थारून मनेपेली ने कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट में सिंगल्स खिताब जीत लिए हैं। महिला वर्ग के फाइनल में अनुपमा ने ईशा रानी बरुआ को और पुरुष वर्ग में थारून ने मलेशिया के सुंग जू वेन को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले हॉकी मैच में भारत को 5-1 से हरा दिया है। पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए दोनों देशों के बीच 5 मैच की यह श्रृंखला खेली जा रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।